ओम शांति। मुरली 26 मार्च 93। वैसे तो मुरली है फरिश्ता वर्ष की मुरली है, लक्ष्य और लक्षण की समानता। उसमें ग्रुप नंबर 1 का है अलवेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। अलवेलापन कमजोरी लाता है इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो और किसी भी युग में नहीं है? जो सोचेगे क्या क्या सोचोगे? कुछ भी प्लस, हाँ पॉजिटिव। संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल कैसा होता है? आंखों से देखा। और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है? किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितने मिलती है? तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर ही मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमजोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल है। बाबा को फेत है, सब पावरफुल है। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है ना, तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलवेले होकर सो जाते हैं तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। क्या कमजोरी? आप तो अलर्ट हो ना, अलवेले हो क्या? सभी अलर्ट हैं? सभी अपने अपनी आंखों पर हाथ लगा के देख ले, अलर्ट हैं? खुली हैं? सदा अलर्ट हैं? संगम युग में बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं? रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं तो अलवेला होगा या अलर्ट होगा? तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है तो अलवेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी हैं। जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलवेलापन नहीं आ सकता। सदा होशियार और सदा खबरदार रहो। तो इसमें बाबा ने कहा कि सभी संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? हाजी, बाप मिला सब कुछ मिला, प्रत्यक्ष फल एक का पदम गुणा, और ये संगम युग है वरदानी युग, और किसी भी युग में नहीं है। जन्मते कौन सा वरदान मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। नहीं तो हमने पहले लाइफ में कहां सोचा था ये चीज, लेकिन वो पवित्रता को धारण करने की ताकत कहां से आई आकर? तो वरदान तुरंत काम किया, वो माना परमात्म वरदान अभी ही प्राप्त होता है। जो हमने संसारिक पुराने सपने संजोए थे, जिनको बार बार स्मृति में लाते थे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे बाबा का ज्ञान मिला तो वो सपने भी एकदम चकनाचूर कर दिया हमने उनको, हमने सोचा नहीं है, माना एक सेकंड की बात, पता है ना एक सेकंड की बात है, एक सेकंड में कितनी हिम्मत मिली। तो एक सेकंड में हमने सारा निर्णय कर लिया, एक सारे क्लब में एक ऐतिहासिक फैसला समझी। उस वो जो एक सेकंड था वो सारे क्लब की तकदीर का था। वो अगर हम उस एक सेकंड में फैसला नहीं करते और पुरानी दुनिया में रहते तो क्या हासिल होता आज। तो एक सेकंड की कितनी बड़ी हिम्मत मिली, वो हिम्मत जो है मदद कितनी बड़ी मिली उसकी, वो है पद्म गुणा मदद सारे कल्प में। केवल उस एक सेकंड में जो निश्चय किया और निश्चय के आधार पर हिम्मत रख के जो हम आगे बढ़े, इस पथ पर हमने अपने कदम रखे, जो भी हमारे सपने थे जिनको हमने बिल्कुल एक सेकंड में नजरअंदाज कर दिया, जो लौकिक में थे जिन रिश्तों रिश्तेदारियों से या संबंधों से मित्र संबंधों से हमारा लगाव था, बहुत प्यार था, बहुत अपनापन लगता था, उनको एक सेकंड में प्राय नहीं बनाया एकदम सच्चे रूप से जानते हैं कि किस रूप से वो अपने हैं। वास्तव में इस ज्ञान में आने के बाद तो और ही हमारा उनसे प्यार बढ़ा है। पहले तो था स्वार्थ वाला प्यार, लेकिन अभी तो हमारा सच्चा प्यार हो गया। पहले तो हमारी इच्छाएं कैसी होती थी कि जो हमें उनसे चाहिए, जो हमारी अपेक्षाएं होती थी उनसे, वो अपेक्षाओं की पूर्ति तक ही हमारी इच्छाएं सीमित थी। लेकिन उसके बाद अभी हमारी इच्छाएं उनके प्रति क्या होगी, ये भी बाबा से पूरा वर्षा ले लें, ये भी बारिश क्वालिटी बन जाए, इनको भी मन इस मार्ग में चलने के लिए वरदानी, मन हमारे जो मानसिकता है उनके प्रति भी ऐसी रही, ऊंची मानसिकता होगी। तो पहले का दृष्टिकोण क्या था और अब का दृष्टिकोण कौन सा बन गया, केवल एक सेकंड की बात थी वो। एक सेकंड में निश्चय हुआ बाबा के ऊपर और एक सेकंड में हमारा सारे कल्प का ये जो फैसला किया था वो फैसला कितना महत्वपूर्ण रहा। उसके आधार पर एक सेकंड के बाबा ने कहा ना, एक कदम में पद्मों की प्राप्ति है। तो ये सारा केवल संगम ऊपर ही है और किसी भी युग में नहीं है। तो संगम युग की विशेषता और कौन कौन सी विशेषता है, एक तो ये हो गया एक का पद्म गुण, और दूसरा अभी अभी किया और अभी अभी प्राप्ति, अभी अभी किया अभी अभी खुशी, अतीन्द्रिय सुख एक सेकंड में। और इसमें फिर बाबा ने बताया कि उसका असर जो है ना बड़े लंबे समय तक रहता है। कितनी देर तक रहता है, जैसे हम योग में अगर जिस समय एक बहुत अच्छा अनुभव कर लेते हैं तो लंबे समय तक उसका असर रहता है, और जिस स्थान पर वो अनुभव किया जाता है उस स्थान पर जाने से ही हमारी मानसिकता भी चेंज हो जाती है। मुझे याद है बहुत साल पहले एक दिन कई समय तक फरिश्तेपन का अभ्यास कर रहा था, तो शाम के टाइम योग में जा रहा था, जैसे गेट पर पहुंचा तो जैसे मैं सचमुच ही फरिश्ता हो गया एकदम एकदम। जो दो केवल 10 कदम थे, वो 10 कदम जैसे मेरे धरती पर थे ही नहीं। तो वहां पर जाते जाते वो स्थिति जो है उस समय याद रहती, तो वो लंबे समय तक वो हमारी स्मृति बनी रहती है। तो एक सेकंड का जो अनुभव है वो लंबे समय तक हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और संगम की कौन सी विशेषता है, विशाल दैवी परिवार की प्राप्ति। ये जो परिवार है दैवी परिवार, पवित्र परिवार है ये, ब्राह्मण जो है रचे गए हैं, स्वयं परमात्मा द्वारा रचे गए परिवार है ये। सारे कल्प में नहीं मिलेगा, केवल संगम पर ही है। और कौन कौन से संगम की विशेषता है, सर्व स्वंदों का रस एक बाप से है, अनुभव कर सकते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात परमात्मा मिलन का जो है विशेषता है, जो केवल संगम युग पर ही, वो भी साकार में। माना भगवान को हम कर्म करते हुए देखते हैं, उनसे हम मिलते हैं, रूहान करते हैं, संबंधों का अनुभव करते हैं, और उससे दिव्य दृष्टि मिलती है, वरदान मिलता है, वो भी हमारे बिना रह नहीं सकता, ये केवल संगम में पर ही है, फिर वो विश्रामी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सभी संगम युग ही श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है, अतीन्द्रिय सुख का। हाँ, प्रत्यक्ष फल मिलता है। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है, एक सेकंड की हिम्मत। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है, तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर ही मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, माने सारे कल्प में ताजा फ्रूट केवल अभी है, उसके बाद तो फिर गिरते ड्राई फ्रूट हो जाएगा। ये जो फ्रूट है यही फ्रूट ड्राई फ्रूट का काम करेगा फिर। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो ना, इसलिए ताजे फल खाने वाले कैसे होते हैं, शक्तिशाली तंदुरुस्त, कमजोर तो नहीं है ना। कल पढ़ रहे थे ना, मास्टर सर्वशक्तिवान है या कमजोर हो, सर्वशक्तिवान की संतान और कमजोर कहे तो क्या कहेंगे, तो केवल सारा समृद्धि और विस्मृति का खेल है। इसलिए शक्तिशाली हो, क्यों, ताजा फल खाया, कमजोर तो नहीं है ना, ताजा फल तो मिल ही रहा है आजकल। तो सब पावरफुल है, कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है तो कमजोर होंगे कैसे, मिल तो रही है लेकिन ले कैसे रहे हैं, वो तो सबको दे रहा है लेकिन लेने में नंबर वार है। शक्ति लेने का साधन क्या है, बाबा से शक्ति लेने का साधन क्या है, सोल कॉन्शियस स्थिति, जिससे स्नेह हो, और जिससे स्नेह हो उसकी याद अपने आप ही आती है, वो अपना सब कुछ निछावर कर देता है, और उससे शक्ति मिलने के और कौन कौन से मार्ग या तरीके हैं, जिस समय जो वो कहेगा उसी अनुरूप उसी प्रमाण हम करते हैं तो भी शक्ति मिलती है। और कैसे मिलेगी, आज्ञाकारी फरमान बरदार, कल भी बताया ना सूक्ष्म फरमान कौन सा है, वरदान में था ना कल, निरंतर याद, वो है सूक्ष्म फरमान, मन वचन कर्म पवित्रता, जरा भी अशुद्धता और अपवित्रता ना हो, टच ना करे संकल्प में भी। तो बाबा कह रहे सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्तिशाली शक्ति मिलती रहती है तो कमजोर होंगे कैसे, कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं, लेकिन वो भी कैसे, अलवेले होकर, एक है डायरेक्ट एक है अलवेले होकर सोना, अलवेले होकर सो जाते हैं तब आ सकती है, कौन आ सकती है, कमजोरी, माया मन कमजोरी के रूप में माया आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है, आ सकती भी माया है। तो आप तो अलर्ट हो ना, अलवेले हो क्या, सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट हैं। संगम युग में बाप मिला तो सब कुछ मिला, तो केवल विस्मृति की नींद है तो हम अलवेले हो जाते हैं, हमको बाबा से क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्तियां हुई है उसकी विस्मृति है, नींद है। अलवेला और अलस्य में फर्क यह है कि अलस्य है जो वो नींद से संबंधित है और अलवेला मन से संबंधित है, वो जागृत अवस्था में। अलवेला हम टाल देते हैं, किसी भी काम को इग्नोर कर देते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, हो जाएगा, जितना भाग्य में है उतना तो मिलेगा ही, है ना। जैसे एक कहानी है ना, एक एक व्यक्ति सोया हुआ था, बहुत आलसी था, अलबेला था, एक वृक्ष के नीचे सोया था। तो उधर से एक राहगीर रोज गुजरता था, देखता था एक युवक उसको के सोया है, वो बड़े मजे से सोया रहता था, जो कुछ कोई दे जाता था खा पी लेता था सो जाता था। तो उसको युवक देखता रहता था, तो कहता है भी आप इधर ऐसे क्यों सो रहते, कुछ कमाओ खाओ, खुद लोगों के इस पर ही आप आश्रित हो, अपना कमाओ खाओ, मैं तुमको नौकरी देता हूँ तो तुम्हारे पास बहुत धन हो जाएगा। तो अच्छा बोला, फिर क्या होगा, बोला तुम बहुत शौकार हो जाओगे, तुम्हारा नाम मान सम्मान होगा, बहुत महल माड़ियाँ होंगी, गाड़ियाँ होंगी, अच्छा और क्या होगा, तुम्हारे पास बहुत सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, फिर क्या होगा, तुम बोला चैन की नींद सो सकेंगे। तो बोला तो मैं सोया हूँ पहले से, वो तो मैं अभी कराटे मार के सो रहा हूँ, तो ये भी कल वेला था। तो अलवेले होकर सो जाते हैं तब आ सकती है क्या कमजोरी, नहीं तो नहीं आ सकती है। आप तो अलर्ट हो ना, अलवेले हो क्या, सभी अलर्ट हैं और सदा अलर्ट हैं, सभी अलर्ट और सदा अलर्ट। संगम में बाप मिला तो सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल दिया था रिवाजी बिजनेसमैन, जब बिजनेस चलता है तो एक सीजन होता है तो पूरे टाइम का सदुपयोग करते हैं, वो जरा भी गवाते नहीं है, उसको अनाड़ी नहीं है। अनाड़ी किस में, सकार मूल्य में। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलवेला होगा या अलर्ट होगा। तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है, पद्मों की कमाई, तो अलवेले कैसे होंगे। परसों का ग्रुप था ना, अपने आप को पद्मा पद्म भाग्यशाली समझते हो, हर कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है, तो अलवेले होंगे कैसे। बाप ने सर्व शक्तियां दे दी हैं, जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलवेलापन आ नहीं सकता। इसलिए सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। होशियार कैसे रहेंगे, होशियार माना समझदार और चुस्त और जागृत, जागती ज्योत, आपके जैसे एकदम पावरफुल। हाँ, और उससे आगे आप, आपकी बात स्वीकार है लेकिन हैं आप ही। हाँ वो तो है ही है, एग्जाम्पल तो कोई सामने रखना पड़ता है ना, इसलिए बाबा ने रखा है आपको सबके आगे। सदा होशियार और सदा खबरदार रहो। तो ये मुरली जो है, इसमें बाबा ने जो कहा है पीछे जो इसमें दिया है, वो लक्ष्य और लक्षण की बात है, वो फरिश्ते से संबंधित थी कि फरिश्ता वर्ष है। तो उसमें बाबा ने कहा कि सभी ने लक्ष्य तो अच्छा रखा है फरिश्ता बनने का, लेकिन लक्षण जो है, कोई कोई बच्चे लक्षण में भी 99% रखें, मानो उस समय कितनी धुन लगी होगी फरिश्ता बनने की सबको, जो बाबा ने 99% सर्टिफिकेट दिया उनको। और कोई कोई बच्चे हैं वो थोड़ा कम है, और कितना कम है थोड़ा, 90%, उससे कम नहीं है कोई भी। तो उस मुरली में बाबा ने कहा निराकारी और आकारी बाप दादा मिल रहे हैं बच्चों से, तो साकारी सामने बैठे हैं, लेकिन जो आकार में आए हैं, आकार में है बाबा से मिलन मनाने के लिए, बाबा उनको भी देख रहे हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा जो उसमें बाधक है, फरिश्ता क्यों नहीं बन पाते, फिर बाद में उसकी व्याख्या की है, उसमें एक ही चीज मुख्य है जो बाधा बनती है, जो ऑब्स्टेकल है, और वो है मैंपन। उसमें बाबा ने कहा मोटे रूप से मैंपन तो खत्म कर दिया, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से है, मोटेपन का देह अभिमान भी नहीं है, किसी को देह का आकर्षण भी नहीं है, स्वयं के देह के प्रति भी लगाव नहीं है, जो भी सुविधाएं हैं उनके प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है, लेकिन सूक्ष्म एक मैं है अंदर, और वो कौन सा होगा, सूक्ष्म मैं, अपनी विशेषताओं से, कहीं कहीं अपनी विशेषताओं से मेरे तन है उनसे लगाव है, अपने गुणों से लगाव है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं क्रिएटिव बुद्धि हूँ और मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है और जी मेरी पहचान बहुत है, मुझे बहुत पहचान दे दो और मेरी साधना बहुत अच्छी है जी, मेरे सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता इसको और मेरे से बिना पूछे कैसे किया। हाँ ये भी मैंपन है, अहंकार है, तो ये सूक्ष्म अहंकार है। और भी सूक्ष्म अहंकार क्या हो सकता है? मैं अच्छा सेवा करता हूँ, वो तो अच्छी बात है, अच्छी सेवा करता हूँ, लेकिन अभिमान वश हो जाते हैं, अभिमान है उसमें उनकी बात की। हाँ हमारे योग बहुत अच्छा है, अनुभव बहुत अच्छे हैं हमारे, हम कईयों से बहुत अच्छे हैं, हम कोई तो कुछ करते नहीं है, ये तो है ही ऐसे, देखते हैं तो गप्पे मारते रहते हैं, लेकिन हम तो कर रहे हैं, पुराणों से भी अच्छे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था 2-3 साल पहले, वो नयों के प्रति संकेत था कि पुराणों को देखते हो, पुराणों के जो खाते में जमा है वो 1 सेकंड में जम मार के आगे चलेंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो वो जिस समय उनकी जरूरत थी और जिन्होंने जो किया उनका जो उस समय जमा हुआ वो हमारा नहीं है उस समय, अभी का उनका खाता बहुत आगे है। तो ये भी सूक्ष्म अनुभव, एक अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि मैं तो बहुत सबसे अच्छा हूँ, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और कौन सा सूक्ष्म अहंकार आ सकता है? हाँ मेरे से बगैर तो किसे पूछना फिर। हाँ जी हाँ, मैं भाषण बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरी कमेंट्री बहुत अच्छी है। हाँ आई कमेंट्री सुनेंगे है? और पावरफुल कमेंट्री सुनेंगे। मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूँ, मेरे सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। इसी को भी पॉजिटिव हम लेते हैं तो बाबा ने कल परसों मुरली में शायद कहा था, सकार मुरली में, कि बाप की तुम बच्चों को भी आवश्यकता पड़ी है, बाप के तुम मददगार बने हो, कितनी बड़ी बात है वो। तो एक पॉजिटिव वे में है कि भगवान को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि उसने हमको चुना, आवश्यकता तो बाद में जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी बाबा ने एक हमको एक सोमान में स्थित करने के लिए कितनी बड़ी वो उस चीज को नए तरीके से पेश किया। तो ये सूक्ष्म, तो इसमें बाबा ने मुरली में कहा कि ये जो सूक्ष्म भगवान है यही फरिश्ता नहीं बनने देता, अर्थात दूसरे शब्दों में जितना निरहंकारी स्थिति होती जाएगी उतना ही आप आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, और उस स्थिति में रहने से फिर अनेकों को अनुभव करा सकेंगे। उसके पहले भी पढ़ा था ना एक बार, जो आप दुनिया को कहते हो और दुनिया उसको मानती नहीं, क्योंकि जो आप कहते हो करते नहीं हो, तो आपका करना कहना और रहना ये तीनों अगर समानता है तो आपको उस सेवा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उनको अपने आप अनुभव होने लगेंगे। अदरवाइज वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उनकी वो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। उसमें एक और बहुत अच्छा कोई शब्द था, उलैनों की माला पहनाते, उनके उलैने समाप्त हो जाएंगे, जो कथने करने और रहने में अगर समानता होगी तो। तो यहाँ बाबा ने कहा जितना निरंकारी बनते जाएंगे उतना निराकारी और आकारी अवस्था में स्थित हो सकेंगे। तो ये था उसमें मुरली में छोटा सा पैरा दूसरा है, ये 25/11/93 की है। सदा अपने को चलते फिरते खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पार्टधारी आत्मा अनुभव करते हो। सदा अपने को चलते फिरते खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पार्टधारी आत्मा अनुभव करते हो। तो बहुत अच्छी एक युक्ति है, जब भी हम चले फिरे तो उसमें केवल यही समान हम याद रख ले कि हम विशेष पार्टधारी हैं, कहां बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर, और खाते पीते भी। जो विशेष पाटदारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट के ऊपर अटेंशन रहता है, वो ऐसा वैसा कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाटदारी होता है। एक मुरली में था ना बाबा ने कहा कि हमेशा ही समझो कि सारे विश्व की आत्माएं आपके मस्तक के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो जो भी हमें तो देख रही हैं, जो हमारे संकल्पों को भी देख रही हैं, हमारे अंदर में क्या संकल्प चला तो वो रीड कर रही हैं। वो सोचेंगे बाहर से तो बहुत अच्छा बोले, अंदर में संकल्प क्या चल रहा है, इनके तो बड़े खतरनाक लोग है, खौफनाक लोग, इनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बाबा ने कहा सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट के ऊपर अटेंशन रहता है, किसको, जो विशेष पार्टदारी होते हैं, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पार्टदारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप होना, तो विशेष आत्माओं को व विशेष पार्टदारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पार्टदारी कभी भी क्या नहीं होंगे, अलविले नहीं होंगे, वो सदा अलर्ट होते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि पुराने संस्कारों की मृत्यु हो चुकी है ना। तो कभी अलविलापन तो नहीं आ जाता ना, कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते, कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, गति में तो अंतर होता है ना। तो ये था 25/11/93 की। अभी हम कमेंट्री सुनेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, इस कमेंट्री से एक आधा जाना चाहिए।
जांच करेंगे, 12 है।